صفحہ نمبر 37، باب سوم، جب یہ خبر بلک پہنچی کہ کس طرح اورنگزیب نے اپنے بھائیوں کو ختم کر کے ہندوستان کا تاجدار بن گیا ہے، تو بلک کے بادشاہ نے نئے شہنشاہ کی نوجوانی کی شجاعت کو یاد کیا۔ جب اسے شہزادگی کے ایام میں شاہ جہاں نے اس کے خلاف لڑنے کو بھیجا تھا، اسے یہ خوف لاحق ہوا کہ اب بادشاہ بننے کے بعد کثیر دولت اور بے شمار جنگجو اور بہادر سپاہیوں کے ساتھ کہیں وہ بلک کی راہ نہ لے اور پچھلی جنگوں کے اثر نو شروع نہ کر دے۔ اس لیے اس نے سفیر روزانہ کیے کہ وہ تحفے طائف، نظر گزاریوں اور پرخلوص امن و دوستی کی طرح ڈالے۔ اورنگزیب ان تمام اسباب سے بخوبی واقف تھا، جس کی بنا پر بلخ کے بادشاہ نے سفیر روانہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ گو اس مملکت کو فتح کرنے کا خیال اب بھی اس کے دل میں تھا، لیکن اسے یہ خوف بھی تھا کہ کہیں شاہ بلخ دوسروں کے ساتھ مل کر اس کی حکومت کی ابتدائی ایام میں ہی اس کے لیے پیشانی کا سبب نہ بنے۔ علامہ عظیم وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ موسم سرما میں ایسی مملکت کے خلاف فوج کشی ناممکن تھی جو بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان گھری ہوئی ہے، اور جبکہ ہندوستانی سپاہی بھی سردی برداشت نہ کر سکتے ہوں۔ چنانچہ اس نے محبت اور نیک نیتی سے سفیروں کا خیر قدم کیا، اس شرط پر کہ وہ ہندوستان کی کسی رسم کے مطابق کو رنش بجا لائے۔ اس طرح کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ تین بار اسے زمین تک لے جائیں۔ سفیروں نے اس شرط کو مان لیا اور بادشاہ کے حضور پہنچ کر شرط کے مطابق کو رنش بجا لائے۔ جب انہوں نے بادشاہ کے قریب ہونا چاہا تو نائب وزیر ملتفت خان نے انہیں روک دیا اور ان کے ہاتھوں سے خطوط لے کر بادشاہ کے حضور پیش کیے، جس کے حکم کے مطابق وہ خطوط جعفر خان وزیر اعظم کے حوالے کیے گئے کہ وہ ان کے جوابات تیار کرے۔ اس دوران میں نے اس سے حکم دیا کہ تمام اشخاص کو خلد سے نوازا جائے اور ان کے لائے ہوئے طائف کو اس کے حضور پیش کیا جائے۔ اورنگزیب نے طائف پر مسرت کا اظہار کیا اور حکم دیا کہ ان سفیروں کو جلد از جلد واپس بھیجا جائے، اس دوران میں وہ جب چاہیں دربار میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ بادشاہ کی اس عزت فضائی سفیروں نے اظہار اطمینان کیا، اس لیے کہ یہ بات اس کی توقعات سے زیادہ تھی۔ دربار کی حاضری کے دوران میں اسی رسم کے مطابق جو شہنشاہ اکبر نے قائم کی تھی وہ کھڑے رہے۔ جب سفیر باہر چلے گئے تو اورنگزیب نے یہ حکم دیا کہ اس چھوٹے گھوڑے کو جو تحفے میں آیا تھا لایا جائے تاکہ اس کی چال کا معائنہ کیا جائے۔ اس ننی مخلوق کی پھرتی پر اسے بڑی حیرت ہوئی اور مزید آزمائش کے طور پر اس نے یہ حکم دیا کہ اس پر آگرے تک سواری کی جائے۔ یہ دلی سے تقریباً 74 کلو کوس کا فاصلہ تھا۔ اسے طلوع آفتاب کے وقت اعتبار خان خواجہ سرا کے نام ایک خط لے کر روانہ ہونا تھا اور اعتبار خان کو اس کی آمد کے وقت کے متعلق بادشاہ کو مطلع کرنا تھا۔ اعتبار خان کے مطابق وہ غروب آفتاب سے قبل ہی قلعہ آگرہ کے دروازے پر پہنچ گیا۔ حکم ہوا کہ اسے شاہی استبل میں امتیازی درجہ دیا جائے۔ اسے باد رفتہ کا خطاب ملا جس کے معنی ہے ہوا کے مانت تیز۔ سفیر دلی میں 4 ماہ لطف اللہ خان کے گھر ٹھہرے، جسے بادشاہ نے ان کی رہائش کے لیے تجویز کیا تھا۔ یہ تمام اشخاص نہایت گندے اور اپنی عاداتوں عطور کے لحاظ سے گنوار اور اجڑ تھے۔ ان کا رنگ سبز کالا تھا، قد لمبے، داڑیاں چھتری اور آنکھیں چھوٹی تھی۔ وہ چست شہ سوار اور ہنر مند تیز انداز تھے۔ ان کے تیر کمان مضبوط اور بڑے تھے۔ جب تک یہ دلی میں رہے ان کے آدمیوں نے مختلف اشیاء تجارت، مثلا گھوڑے، اونٹ، مشک، کراکلی اور کھالیں جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے فروخت کیے۔ میں نے بھی ان سے مختلف چیزیں خریدی۔ انہوں نے جلدی بادشاہ کے حضور یہ التماس کیا کہ انہوں نے واپس جانے کی اجازت دے دی جائے۔ इसलिए कि शदीद गर्मी पड़ने के बायस इसलिए यहाँ की आबो हवा मुनासब थी, चूंकि वह दूसरों की आदि थे, इसलिए उन उनमें से कई अशखास मर गए, लेकिन उनकी अमवात का सबसे बड़ा सबब उनकी हर्ज थी, जो रकम बादशाह की जानब उनके अखराजात के लिए मंजूर हुई थी। वो इससे खर्च न करना चाहता था, इसलिए बीमार घोड़ों और ऊंटों का गोश्त खाया करते थे। ऐसा हुआ कि सफीर का एक अजीज बीमार पड़ गया। समझते हुए कि मैं तबीब हूँ, क्योंकि वो हर पूरी बाशने को तबीब ही तसव्वुर करते थे, उन्होंने मुझे बुलाया भेजा। मैं चंद टोकने तो जरूर जानता था, मगर खुद को तबीब ना कहलवाता था, ना ही मुझ में इतनी हिम्मत थी कि दूसरों की जिंदगियों से खेलकर खुद को इलम तलब सिखाऊं। लेकिन ये देखकर उन वहशियों ने अपना घर बुलाया है, मुझे उनकी तर्ज रहायश के मुशाहदे का शौक हुआ। मैं बड़े ठाट बाट से उनके यहाँ पहुंचा। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि मरीज नहायत गंदा गंदे बिस्तर पर लेटा हुआ है, उसके पसीने से सड़े हुए पंसर की बू आ रही है। मैंने उसका मंगवाया तो उसमें भी वही बू थी। मैंने उसकी नब्ज देखी, मगर मेरे ख्यालात नब्ज पर मुत्तकाना थे। मैं ये सोच रहा था कि कोई ऐसी चीज हाथ आए जो उसे कामल शिफा देने की मुश्किल को हल करे, ताहम मैंने ये जान लिया कि उसे तेज बुखार है। इसके सर पर हाथ रखकर जो बदबूदार पसीने में भिगा हुआ था, मैंने महसूस किया कि वो आग पर रखे बर्तन की तरह जल रहा था। उन्हें ये जिताने के लिए कि मैं बहुत बड़ा तबीब हूँ, मैंने मरीज की उम्र पूछी। इधर फिर चंद लम्हे के बाद ख्यालात में डूब गया, गोया मैं बीमारी का सबब तलाश कर रहा हूँ। इसके बाद तबीबों के अंदाज में मैंने चंद ऐसे अल्फाज कहे जिनसे बीमारी की शदीद नोयत जाहिर होती थी। मैंने ये इसलिए किया कि अगर वो मर जाए तो मेरी शोहरत और इज्जत की को बटाना लगे। सब के सब मेरे मोतरफ थे और आपस में ये कह रहे थे कि मैं बड़ा तबीब हूँ, और ये कि फरंगियों को तबीब कामल होने की सलाहियत अल्लाह ताला की तरफ से होती है। सफ़ेर ने मुझसे पुरजार इस्ताद आ की कुव्वत इसके अजीज को सेहत याब करने में खर्च कर दूं। मैंने उसे शिफा की उम्मीद दिलाई, चूंकि बदबू के बायस मैं इस जगह और कुछ ना कह सकता था। मैंने ये कहा कि मैं दुआ तैयार करने घर जा रहा हूँ और अब शाम को फिर आऊंगा। मैं बाहर निकला और अपने एक पत्थर लिगाई दोस्त के पास गया, जो मेरा एहसान मंद था, और उसे जो कुछ गुजार था बताया। चूंकि वो दवाओं के मामले का काफी वाकियत रखता था, उसे इस किस्म की इतला पर बहुत हैरत हुई। उसकी ये समझ में ना आता था कि वो मरीज के लिए क्या तशखीस करे, ताहम उसने मुझे गोलियां दी। 3 दिन तक वो मेरे काम आई हैं। मैं इन्हें मरीज को देता रहा, मगर मुझे उसकी हालत बेहतर होती ना दिखाई दी। इसके बावजूद सब यही कहते रहे कि वो शिफा याब हो रहा है, जिस पर मैं बहुत खुशी का इजहार करता रहा। मौका से फायदा उठाते हुए दवा की ज्यादा से ज्यादा तारीफ और मर्ज की खतरात का जिक्र करता था। दिन में 2 बार उसे देखने जाता था, एक बार सुबह को और दूसरी बार शाम को, और हर बार 400 मुझे लेने के लिए आते। तकरीबन हर रोज जब मैं वहां जाता तो मुझे सफेर के साथ खाना खाना पड़ता था। इस तरह मुझे उनके खाने के तरीके को देखने का मौका मिला। 50 से ज्यादा आदमी कपड़ा बिछाकर उसके गिर्द बैठ जाते थे। खाने में ऊंट और घोड़े का गोश्त होता था, जो पानी में नमक के साथ पकाया जाता था। बकरी के गोश्त के साथ पका हुआ पलाव भी होता था। वो कपड़ा जो वो दरी पर बिछाते थे बहुत गंदा होता था। वो खुदातर तंगे पर कपड़े पर चल फिर कर खाना तकसीम करते थे। हर एक के पास हाथ में एक बड़ा चमचा होता था। अजबक सरदारों को खाते देखकर कभी अतिघीन आती थी। खाते वक्त उनके हाथ, ऊंट, होंठ और मुंह सब चिकनाई से लथड़ जाते थे, इसलिए कि उनके पास ना तो काटने काट काटते होते हैं और ना चमचे। इनमें से हर एक के पास महज 3-4 छोटी बड़ी छुरियां होती हैं, जिन्हें वो बिलअमूम अपने टपके से टुकाए रहते हैं। मुसलमानों की आदत यह है कि वो खाना खाकर अपना हाथ बेसन से धो लेते हैं ताकि चुकनाई दूर हो जाए, और अपनी मूंछों को एहतियात से साफ कर लेते हैं। लेकिन अजबक सरदार इस किस्म का तकल्लफ नहीं करते। जब वो खा चुकते हैं तो अपनी उंगलियों को चाट लेते हैं ताकि चावल का एक दाना भी ना बचने पाए। वो एक हाथ को दूसरे हाथ पर मल लेते हैं ताकि चर्बी गर्म हो जाए, और फिर दोनों हाथों को मुंह, मूंछ और दाढ़ी पर फेर लेते हैं, गोया जो सबसे ज़्यादा चिकना होता है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है। इसके बाद वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और फिर ये एक तंबाकू नोशी शुरू कर देता है और कुछ देर गुफ्तगु करता रहता है। ये गुफ्तगु चर्बी के जिक्र से आगे नहीं बढ़ती, जिसमें ये शिकायत होती है कि मुगलों के मुल्क में चर्बीदार चीज़ें खाने को नहीं मिलती और ये पलाव में घी कम होता है। अपनी इश्तहा की तकमील को खराज अदा करने के लिए वो इसी जोरदार दाड़ी लेते हैं जिसे से ये बैल डाल करता है। गोया ये बात मेरी तबीयत के खिलाफ थी, मगर मैंने मरीज का इलाज जारी रखा और उससे पूछ गूछ करके ये मालूम कर लिया कि मरीज घर पर किस किस्म का खाना खाता था। इसने मुझे बताया कि चूंकि वो गुदड़िया है, इसलिए वो ऊँटनी के दूध पर गुजारा करता है और दूध को खट्टा करके जो पनीर और दही बनाया जाता है उसे कसरत से इस्तेमाल करता है। इस तरह मैंने ये मालूम कर लिया कि उसके पीसने और वक़ार से जो बदबू आ रही है वो उसी किस्म की गज़ा की बदौलत थी, और हिंदुस्तान की गर्मी ने इस बदबू का अखराज कर दिया था। बस मैंने उसे ये मशवरा दिया कि वो इस किस्म की गज़ा खाए जो वो अपने मुल्क में खाता था। मूंगे के सुस्त का शरबत दे देकर मैंने उसे 5 दिनों में सेहतमंद कर दिया। सफ़ीर इतना खुश हुआ कि उसने 9 सरे और काफ़ी मकदार में खुशक मेवे मेरी नडर रखे। उसने मुझसे इल्तजा की कि मैं इसके घर ही रहूं, मुझे अपने साथ ले जाना के लिए जो कुछ कर सकता था उसने किया। उसने ये वादा भी किया कि वो बलख के बादशाह से मुझे ज़मीन और घोड़ों और ऊँटों और भेड़ों का गल्ला दिलवा देगा। इसके अमले में शाह होने को मेरा बहुत जी चाहता था ताकि मैं दुनिया देख सकूं, मगर चूंकि उनकी आदत मुझे पसंद ना आई इसलिए मैंने बेहतरीन माजरतें की और ये कहा कि मैं इनके तर्ज ज़िंदगी का कभी आदी नहीं हो सकता। ये सफ़ीर बहुत सी तारी और अजबक औरतें अपने साथ फरोख्त करने के लिए लाए थे। वो इसलिए हरम में रखी जाती थी कि ये तो पालकियाँ उठाएं, या फिर जब बादशाह और शहजादे अपनी बीवियों के पास हों तो वो पहरा दें। उन्हें इसका काम के लिए यूं मुंतखब किया जाता था कि वो जंगजू होती हैं और तीर तलवार पर 6 का इस्तेमाल खूब जानती हैं। इनमें से एक का नाम यक्षा था, जिनके मानी तुर्की जबान में खूब होते हैं। ये दराज कद, मजबूत चौड़े चेहरे और छोटी आंखों वाली औरत थी जो तीर कमान के इस्तेमाल में माहिर थी। इस औरत को इफ्तखार खान ने खरीदा था, जिसने उसे बादशाह की नज़र कर दिया। औरंगज़ेब ने यह हुक्म दिया कि उसे भी इन औरतों में शामिल कर लिया जाए जो रात को बादशाह के पहरे पर मुकर्रर होती हैं। जब चंद माह गुजर गए तो उन सुजा औरतों की उर्द बिंगी ने बादशाह को ये इतला दी कि बख्शी अमल से हैं, और औरंगज़ेब ने जवाब दिया, अगर इसके लड़का हो तो वो उसकी परवरिश अपने बेटे की तरह करेगा, और अगर लड़की हो तो बेटी की तरह। इस तात्री औरत के यहाँ लड़का पैदा हुआ। बादशाह ने उसे अपना बेटा बना लिया और उसे आलमशोश बहादुर का खिताब दिया, यानी सारे आलम का सजा। जब वो बड़ा हुआ तो उसे शहजादे का मर्तबा मिला, लेकिन उस नौजवान के बदसलीका हाल चलन के बादशाह औरंगज़ेब को मजबूर किया उसे निकालना पड़ा। शहजादगी का मर्तबा ख़त्म कर दिया गया और उसे मामूल तनख्वाह पर छोड़ दिया गया। यहाँ ये बता देना मुनासिब होगा कि हिंदुस्तान में ये रस्म है कि ऐसे बच्चों की परवरिश बेटियों की तरह होती है। तजर्बा बताता है कि ऐसे बच्चे शादी अच्छे निकलते हैं और बिलअमूम घर की बर्बादी का साबित होते हैं। चार माह गुजरने वाले थे और अब बलख के सफ़ेर अपने मुल्क को वापस जाने की ख्वाहिश का इजहार करने लगे। औरंगज़ेब ने उनकी रुख्सत करने हुए ये हुक्म दिया कि हर एक को 2 उम्दा सरापा और 8,000 रुपए नकद दिए जाएं। बलख के बादशाह को उससे ज़रफ़त के बहुत से थान नकाब बनाने के लिए बहुत नफीस सफ़ेद कपड़ों के थान, 5 बड़ी बड़ी कालीन, 2 जुड़वा खंजर, अतर गुलाब की 5 बोतलें और 9 कीमती और खूबसूरत सरपा तोहफे में दिए, जिनमें जिनसे सफ़ेर बहुत ज़्यादा मुतमिन हुए। उनका इत्मीनान न समझी के सबब था, इसलिए उन्हें यह मालूम था कि मुगल बादशाह वो महज राया को ही सरपा बख्शता है। किसी को सरपा भेजने का मतलब ये है कि उसे अतात गुजार तस्लीम कर लिया गया है, और अगर वो उसे कबूल कर ले तो फिर किसी और तोहफे की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। बादशाह से रुख्सत तलब करने के बाद सफ़ेरों ने अपना अपना सामान शहर से बाहर भेज दिया और खुद 50 सवारों के हमरा बड़े बड़े उमरा उसे रुख्सत तलब करने के लिए ठहर गए। सबसे पहले वो वज़ीर आज़म जाफ़र खां के पास गए। उसने रस्म के मुताबिक खासद उनमें पान पेश किया, जिनमें से उन्होंने वापसी पर पान खाए। खासद उन सोने का था और उसकी कश्ती में कीमती पत्थर जुड़े हुए थे, दोनों 1,00,000 रुपए से ज़्यादा कीमत के थे। सफ़ेर ने तजाहिल से काम लेते हुए उस बहाने से गोया दोनों चीज़ें उसे तोहफे में बख्शी गई हैं। खासद इन और कश्ती लेकर अपने कपड़ों में रख ली, जो बड़े लंबे चौड़े और घेरेदार होते हैं। बाद अजां उसने चंद तहसीनी कलमात किए और फौरन ही रुख्सत चाही। ख्वाजा सरा ने बिलाता खैर उन गुनवारों की इस पस्तो जहनत से वजीर को मतला किया। वजीरान लोगों की हरीस तबीयत से बखूबी वाकफ थे। उसने ये हुक्म दिया कि फौरी तौर पर तमाम अमरा को बलख के सफ़ेरों की इस हरकत से मतला किया जाए। अमरा को जब उस नुकसान की खबर हुई तो उन्होंने सफ़ेरों की आमद पर चांदी के कम कीमत खसानदाओं में पान भेजे। मोहम्मद अमीन खां और इसके बाद मलतफ खां ने यही किया। जब उन्हें यह पता चला कि जाफ़र खां की तरह अब और कोई धोखे में नहीं आएगा तो उन्होंने पान खाए, मगर ज़्यादा वो मुलाकातें ना कीं और शहर से निकलकर अंदर और बाहर की परबी समेत अपने मुल्क को रवाना हुए। मुल्क के नज़्मो नस्क़ को बड़ी हद तक दुरुस्त कर लेने के बाद और उन फतुहात पर इत्माद करते हुए जो उसने खुशकी में हासिल की, और औरंगज़ेब ने समुंदर पर भी अपना दबदबा कायम करना चाहा। बस उसने ये फैसला किया कि जहाज़ों की एक बड़ी तादाद पर मुश्तमल एक बहरी बेड़ा तैयार किया जाए। इस फैसले का सबब मुसलमानों के एक जहाज़ का नुकसान था, जो कोड़ियों से लदा हुआ मालदेवा से आ रहा था, जिन्हें मुमकलत बंगाल में सिक्का राइज अल वक्त की हसीयत हासिल है। थोड़ी सी जंग के बाद बहरी कजाकतों ने इस जहाज़ पर कब्जा कर लिया, जहां से कप्तान और ताजरों की कजाकों को बताया कि कोड़ियां उनके किसी काम ना आएंगी, लहाजा अगर वो उनके साथ मक्का तक चलें तो उन बंदरगाह में वो इन्हें 40,000 फटके अदा कर देंगे। ये पेशकश कबूल कर ली गई और कुरान मक्का गए। बंदरगाह से कुछ फासले पर उन्होंने इस मुआहदे की तकलीक का इंतज़ार शुरू कर दिया, लेकिन मुसलमानों ने कजाकों को मुतमिन करने के बजाय वहाँ वो शाही जहाज़ों की मौजूदगी का फ़ायदा उठाया। ये जहाज़ हिंदुस्तानों के अमरा बेगमत और फ़कीरों को मक्का लाए थे। उन्होंने ये तदबीर की कि दिगर तजारती जहाज़ों की मदद से सब के सब फ्रांगी कजाकों को पकड़ने के लिए रवाना हों। मामला इसकी तवक्कात के बरअक्स निकला। वो शिकार पर निकले थे मगर खुद शिकार हो गए। जब कजाकतों ने 10 या 12 जहाज़ों को अपने खिलाफ आते देखा तो उन्होंने भागने का बहाना किया, ताकि ये नतजर्बाकार लोग खुले समुंदर में आ जाएं। मुसलमान ने ये सोचते हुए कि अब उसके बचने की कोई राह नहीं है, तो कजाकतों के जहाज को पकड़ने की हर मुमकिन तदबीर की, मगर उन्हें बहुत ताज्जुब हुआ जब कजाकतों ने आला हिम्मत और मजबूत अरादे से अपना जहाज मोड़ा और हमला आवर जहाजों के दरमियान घुस कर नहायत फुर्ती से अपनी बंदूकें शुरू कर दी। यूं इन्हें उन्हें तबाला कर दिया। इस तरह कुछ एक तरफ भागे, कुछ दूसरी तरफ। कजाकों ने एक जहाज को पकड़ लिया और उसे खाली करके उसमें आग लगा दी और इस तरह जहाज उसके उसके तमाम आदमी आग की नजर हो गए। वो इस इंतजाम से मुतमिन ना हुए, ये जानते हुए कि मुसलमानों को समंदरी जिंदगी के मुतलक कितनी कम मालूमात हैं और ये कि समुंदर पर उनकी कितना कम काबू है। वो सूरत के करीब डूबे के अर्ज अब तक बढ़ गए और शाही जहाज़ों का इंतज़ार करने लगे। ये जहाज़ फ़कीरों के अलावा वो बड़े बड़े उम्रा बेगमात को लेकर मक्का से वापस आ रहे थे। इन पर सक्के भी बहुत थे, बिलखसूस के जिन्हें अवाम नास सेकुनस कहते हैं। आखिरी वही हुआ जिनकी उन्हें तवक्का थी। जिस जैसे ही वो दो जहाज पहुंचे तो उन्होंने उन पर हमला कर दिया और एक को काबू में कर लिया। ना सिर्फ ये कि उन्होंने इसका माल लूट लिया बल्कि जहाज पर बेगमात की बेहरमती भी की। सबा शिदा जहाज सूरत पहुंचा तो वहां के गवर्नर ने औरंगजेब को तमाम वाकयात की इतला दी। जंगी जहाजों का बेड़ा तैयार करने की ख्वाहिश का यही सबब था ताकि बहरी कजाकों से समुंदर को पाक करके इस पर अपना असर कायम किया जाए। इस मकसद के पेश नज़र बादशाह ने वजीर आला जाफर खां, जो खुद भी बड़ी फहम व फरास्त का मालिक था, अपनी तजवीज़ से बतला किया। उसने अपने जवाब के लिए बादशाह से मोहलत तलब की। कुछ दिनों के बाद उसने बादशाह को बताया कि वो गो शहनशाह आलम पनाह के पास जंगी जहाज़ों की तमीर के लिए अमराती टकरती या दिगर साजो सामान की कोई कमी नहीं, लेकिन उसके पास सबसे अहम चीज़ यानी वो आदमी नहीं है जो उसका नज्म व नस्क संभाल लेंगे। और औरंगज़ेब ने यह जवाब दिया कि ये काम उन फरंगियों के सबूत किया जा सकता है जो तनख्वाहदार शाही मुलाजम हैं। लेकिन जाफर खान ने एक वफादार वजीर की हैसियत से हिम्मत करके ये जवाब दिया कि ऐसे अहम मामले में इन गैर मुल्कों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता जो खुद अपने ही मुल्क से फरार अख्तियार कर चुके हैं। एक तो वो लोग आसानी से भाग सकते हैं, फिर वो उन मुगलों सिपाहियों को भी खातर में नहीं लाएंगे जो जहाज को चलाएंगे, और चूंकि मुगल सिपाही मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता नहीं है लिहाजा गैर मुल्की अहलकारों के बस में होंगे। औरंगजेब ने इन तमाम दलाए पर कोई तवज्जा न दी और यह अहकाम सादर किए कि जहाज बनाया जाए, और वो इन तमाम मुश्किलात का मुशाहिदा जिनका जिक्र जाफर खान ने किया था अपनी आंखों से करना चाहता था। मेरे हम वतन हकाक नजली को जहाज की तमीर का हुक्म दिया गया जिसने बादबानों रस्तों तोपों और परतूलों से लेस के एक छोटा छोटा सा जहाज तैयार किया। जब से ये तैयार हो गया,
सफा नंबर 45, जब ये तैयार हो गया तो उसे एक बड़े तालाब में डाल दिया गया। बादशाह और तमाम दरबारी इकट्ठे हुए कि वो इस मशीन को देखें जो ज़मीन पर न चल सकती थी। वह यूरोपी तोपची और बहरी जहाज़ों को चलाने के माहिर थे। जहाज पर सवार हो गए। उन्होंने नहायत चाबक दस्ती और महारत के साथ बादबानों को दुरुस्त करके पतवारों के जरिए जहाज को हर चार जानब चलाया और फिर गोया वो किसी और जंगी जहाज का मुकाबला कर रहे हों। उन्होंने तोपों को हर तरफ घुमाते हुए उन्हें दागा। ये मंजर देखकर और जहाज कई तमीर हुए। इससे चलाने की महारत का अंदाज़ा करके औरंगजेब ने यह तय किया कि समुंदर पर जहाज चलाना और बहरी जंग करना हिंदुस्तानियों के बस की बात नहीं है। ये काम महज फरंगियों की जुस्ती और जुर्रात की ही को जेब देता है। बस उसने इस मंसूबा को ख़त्म कर दिया जिसके मतलब उसने इतनी जिद की थी। औरंगजेब की हकूमत के दूसरे बरस बादशाह ईरान शाह अब्बास का सफीर, और जब औरंगजेब के मालूम हुआ कि वो हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल होने वाला है तो उसने अपने एक मुनसबदार अब्दुल्ला बेग को جو اعلیٰ فہم و فرست کا حامل تھا، اس سے ملاقات کو بھیجا۔ اس کا یہ حکم تھا کہ سرحد پر ہی سفیر کا استقبال کر کے اس کے ارادوں کا پتہ چلایا جائے، اور اس عمر میں اخراجات کی کوئی پرواہ نہ کی جائے گی۔ نیز سفیر کو یہ بتانے کی کوشش کی جائے کہ ہندوستانی دربار کے آداب و سوم کے مطابق دربار میں کورنش بجانا لازم ہے، اور یہ کہ اکبر کے زمانے سے لے کر آج تک ایک قدیم رسم یہ چلی آتی ہے کہ مغل شہنشاہ کسی کو کسی سے پیش نہیں کرتا، اور نہ کسی شخص کے ہاتھوں سے براہ راست کوئی خط وصول کرتا ہے۔ خطوط وزیر کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جو انہیں پڑھ کر بادشاہ کو سنتا ہے۔ سفیر کو ان تمام باتوں کی تفصیل بتانے کے بعد اس بات کا پتہ چلنا بھی ضروری تھا کہ آیا وہ دربار میں کورنش بجا لانے اور وزیر کے ہاتھوں میں خط دینے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ ان تمام باتوں کے متعلق اسے بادشاہ کو پوری تفصیل پیش کرنی تھی۔ بعض لوگ پورے وسوق سے اس خیال کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ بادشاہ نے عبداللہ بیگ کو یہ خفیہ احکام بھی دیے تھے کہ اگر سفیر ہندوستانی آداب و رسوم کو بجا لائے کے لیے تیار نہ ہو تو اسے واپس بھیج دیا جائے۔ اس نے اپنے نائبان اور صوبے داروں کو بھی یہ احکامات جاری کیے کہ وہ نہایت نزک و احتشام کے ساتھ سفیر کا خیر مقدم کریں، تاکہ اس کا اعتماد حاصل کر کے بآسانی اس کے ارادوں کا علم حاصل کر سکیں۔ عبداللہ بیگ کندھار کی سرحد پر سفیر کا استقبال کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ وہاں سے وہ اسے اپنی معیت میں کابل تک لایا۔ کابل سے عبداللہ بیگ نے بادشاہ کو یہ لکھا کہ میں نے سفیر کو مغل دربار کے آداب و رسوم سے بخوبی مطلع کر دیا گیا ہے، اور اس نے ان تمام فریضوں کو ادا کرنے میں جو دیگر شہنشاہ ہیں فراستہ دیا سفیر ادا کرتے آئے ہیں، کسی قسم کا تعارف نہیں کیا، اور متعدد بار مجھے اس کا یقین بھی دلایا ہے اورنگزیب ایرانیوں کی ذہانت اور ان کی منافقت کی صلاحیتوں سے بخوبی واقف تھا۔ اسے یاد تھا کہ کس طرح ایک اور ایرانی سفیر نے شاہ جہاں کے زمانے میں گستاخی کا مظاہرہ کیا تھا۔ پس اس نے لاہور کے صوبے دار کو یہ لکھ بھیجا کہ وہ کسی دعوت کے موقع پر نہایت نرمی سے خود سفیر سے اس بات کا پتہ چلائے کہ کیا وہ ہندوستانی رسم کے مطابق کورنش بجا لانے کے لیے واقعی تیار ہے۔ صوبے دار نے بادشاہ کو مطلع کیا کہ سفیر نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ وہ دیگر سفیروں کی طرح رسوم بجا لائے گا۔ جب سفیر کے دلی پہنچنے میں ایک دن رہ گیا تو اورنگزیب نے محمد امین خان کو 1000 سواروں کی معیت میں روانہ کیا کہ وہ اس کا استقبال کرے اور اسے شہر میں لے آئے۔ نیز یہ کہ وہ اس کی سفارت کا مقصد اور آمد کا سبب دریافت کرے۔ سفیر کو ان 500 ایرانی سواروں کو جو اس کے ساتھ تھے تحفے تحائف پیش کرنے میں کسی قسم کے بخل کی اجازت نہ تھی، اور اورنگزیب نے یہ بھی حکم دیا کہ وہ واپسی پر آہستہ آہستہ آئے، تاکہ سفارت کا مقصد اور ہندوستانی کے رواج کے مطابق کورنش بجا لائے کے سلسلے میں سفیر کے ارادوں کا پتہ چلانے کے لیے مہلت مل جائے۔ نیز یہ کہ ان سڑکوں کی آرائش بھی کی جائے جن سے سفیر کو گزرنا تھا۔ اسے یہ حکم تھا کہ شہر سے 3 کوس پر شالیمار باغ کے نزدیک ایک سفیر کو ٹھہرائے، اور اورنگزیب نے اور بہت سے امراہ کو محمد امین خان کے پیچھے روانہ کیا کہ وہ سفیر سے ملاقات کریں، لیکن سفیر نے کھل کر یہ نہ بتایا کہ وہ کورنش بجا لانے کو تیار ہے یا نہیں، اور سفارت کا مقصد بتانے سے بھی گریز کیا۔ ادھر اورنگزیب یہ جانتا تھا کہ اس سفارت کا کیا مقصد ہے، اور یہ کہ آیا وہ ہندوستانی رواج کے مطابق کورنش بجا لانے کو تیار ہے یا نہیں ہے۔ اسے یہ خوف تھا کہ شاید شاہ عباس ایرانی عہدیداروں کی مدد سے اس کے عہد حکومت کے آغاز میں کوئی بجا بات نہ کر گزرے۔ اب بھی کچھ لوگ ایسے موجود تھے جو شاہ جہاں کے ہمدرد اور اس کے مخالف تھے، اور چونکہ وہ اس بات سے واقف تھا کہ ایرانی دغا فریب کی طرف کتنے مائل ہیں، اس لیے وہ حفاظتی ترکیب کرنا چاہتا تھا۔ جب سفیر منقذرہ بالا باغ کے قریب ठहरा तो दरबार से एक अहदेदार मोहम्मद अमीन खां के पास पैगाम लाया कि वह सफ़ेर को ये जिता दे कि गो बिल अमूम सफ़ेरों के खतूत वज़ीर वसूल करता है, मगर चूंकि वो शाह अब्बास का सफ़ेर है इसलिए उसके साथ ये रायत हो गई कि बादशाह के बेटों में से कोई शहज़ादा वह खतूत वसूल करे। सफ़ेर ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया। इस दौरान मैं औरंगज़ेब ने यह हुक्म दिया कि जिस सड़क से सफ़ेर को गुजरना है उसके दोनों जानब एक कोस के फासले में सिपाही मुतय्यन किए जाएं, ख़ास खास सड़कों, दुकानों और खिड़कियों की आराइश कीमती साजो सामान से की गई और सफ़ेर को इन्हें सड़कों से अहदेदारों की मैयत में शमशानियों की मसूकी के साथ गुजार आ गया। कला यानी शाही महल के दरवाजे पर उसे तोपों की सलामी दी गई। औरंगज़ेब एक ऐसे तख्त पर बैठा था जिसकी शक्ल हूर की तरह थी। फ़न का ये नादर नमूना शाह जहां ने बनवाया था, मगर उसे उस पर बैठना नसीब न हुआ इस खौफ से कि शायद सफ़ेर को नश बजा लाने के लिए तैयार न हो। औरंगज़ेब ने चार दराज कद और जिसम अशखास को अपने करीब तैनात किया जिन्हें यह हुक्म था कि अगर सफ़ेर रहम के मुताबिक अमल करने से इनकारी हो तो वह ज़बरदस्ती उसकी गर्दन झुका दें। 12,000 बेश कीमत अशियाए आरास्ता किया गया था। सफ़ेर तमाम उम्रा की मुइयत में बादशाह के सामने नाबुदार हुआ और जब इस मुकाम पर पहुंचा जहां उसे इस्लाम बजा लाना था तो अमरा ने उसे बताया कि अब उसके फ़र्ज़ की अदायगी का वक्त आन पहुंचा है। अब्दुल्ला बेग की हदायत और अपने वादों को नज़रअंदाज करके जिनका आदा उसने कई बार किया था सफ़ेर ने ईरानी तर्ज पर सीने पर हाथ रखकर इस्लाम किया। पस वो चार मजबूत आदमी जिनका जिक्र हो चुका है सामने आए, दोनों उसके हाथ पकड़े और दोनों गर्दन और बिला किसी कुव्वत या तशद्दुद के इस्तेमाल के गोया वो महज तरीका सिखा रहे हों। उन्होंने उसके हाथ नीचे किए और गर्दन झुका दी और ये कहा कि मुग़लों में कोर्नश बजा लाने का ये तरीका है। इस पर सफ़ेर ने फरासत से काम लिया और बिला किसी जद्दोजहद के अपना पूरा जिस्म झुका दिया और हिंदुस्तानी रवाज के मुताबिक कोर्नश बजा लाया। इस मौका पर औरंगज़ेब ने कदर से मुंह मोड़ा और गोया वो अपने बेटे से कुछ कह रहा हो। शहज़ादा उठा और सफ़ेर के पास आया। सफ़ेर ने बिला किसी रखश के इजहार के चेहरे पर मुस्कराहट लाते हुए खत निकाला और अपने सर पर रख कर शहज़ादे के हवाले किया। शहज़ादे ने वो खत बादशाह को दिया जिसने उसे अपने ख्वाजा सरा दानिश की तहवील में देने का इशारा किया जो बादशाह की खांगी अमूर का सरबराह था। जब सफ़ेर ने शानदार खुलत जेब तन कर ली तो मीर तशरीफात ने उसे आगाह किया कि अब इन ताइफ को पेश करने का वक्त है जो वो ईरान से लाया था। तोहफे में 27 कद अवा मजबूत घोड़े थे और हर घोड़े के साथ दो अशखास में लगाम थामने के लिए थे। उनमें से तो घोड़े कीमती पत्थरों से आरास्ता थे और उनकी मोतियों से मजी की गई थी। बाकी मांदा घोड़ों पर यकूब के झूल थे और जो उनके पैरों तक पहुंचे थे। 18 कद आवर बालदार ऊंट थे जो हिंदुस्तान या बालक के ऊंटों से ज़्यादा लंबे थे और उन ऊंटों पर भी खूबसूरत कपड़े पड़े हुए थे। 60 संदूक को असल अरग गुलाब के थे और 20 एक और अरग के जो उन फलों से कशीद किए गए जाते थे जो महज ईरान में ही मिलते थे और जिसे बैद मश्क कहा जाता था। ये अरग गर्मी से पैदा शुदा हर किस्म के बुखार में सकून बख्श साबित होता है। 12 खूबसूरत कलीन थे जिनका तोल 15 हाथ और अर्ज 5 हाथ था और जो बहुत खूबसूरत और नफीस थे। 4 संदूकों में जरबत के थान थे और जो बहुत उम्दा और कीमती थे जिन पर खूबसूरत फूल कड़े हुए थे। 4 जरावटों छोटी तलवारें और 4 जोड़ा खंजर थे। एक सरबरा महर सोने का बक्स भी था जिसमें शिराज के पहाड़ों का मतन था। औरंगजेब ने अपने चेहरे के शगुफ्ता तासरात के साथ शाह अब्बास के ताइफ पर निगाहें तजस डाली और मोहम्मद अमीन खां को इशारा किया कि वह सफ़ेर से चंद मुखलसाना सवालात करे। इसके बाद वो उठ खड़ा हुआ, सफ़ेर की रुख्सत दी और ये कहा कि अगर वो फिर कभी चाहे तो दरबार में शो आ सकता है। सफ़ेर चंद उमरा के साथ बाहर आया जो उसे इस महल में लाए जो उस इसके लिए पहले से तैयार किया गया था और जिसमें उस मकसद के लिए कालीन बिछाई गई थी। औरंगज़ेब ने अमरा को यह हुक्म दिया, दो सफ़ेर के क्याम दिल्ली के दौरान में शाही खर्च पर उसकी खातर मदारत नज़्क व एहतशाम के साथ करें। हर अमीर अपनी सहूलत के मुताबिक इस काम के लिए एक दिन मुकर्रर करे। बिजार से अब्दुल्ला बेग को दरबार से बेइज्जती के साथ निकाला दिया गया इसलिए कि ईरानी सफ़ेर फौरी तौर पर कोर्निश बना न लाया और इस गम से जल्द ही मर गया। 8 दिनों बाद वजीर जाफर खां की तरफ से एक शानदार दावत में जो हिंदुस्तानी रिवाज के मुताबिक थी मद्दु किया गया।
दिल्ली में अपने 4 माह से ज़्यादा के क्याम में सफ़ेर ने मोहम्मद अमीन खान के अलावा वो किसी और की दावत कबूल ना की। रुखसत से 8 दिन पहले मोहम्मद अमीन खान ने उसकी नहायत शानदार दावत की। 4.5 माह गुजरने के बाद अगस्त सफ़ेर को तज़को एहतशाम के साथ रुखसत किया गया। औरंगज़ेब ने उसे 2 घोड़े मांसार एक जुड़वा खंजर पगड़ी में पहनने के लिए एक खूबसूरत जमर्द और एक कीमती खुलत अनायत की। सबसे आखिरी उसे शाहजहाँ अब्बास के लिए खत और एक जड़ाव कलमात जो सर बा माहिर था दिया। किसी को ये ना मालूम हो सका कि इसके अंदर क्या था। सफ़ेर की रवानगी के थोड़े अरसे बाद औरंगज़ेब यकबक बुखार में मुब्तला हो गया जो आसना शदीद था। उस पर बेहोशी तारी होगी। तबीब खून की हदत काम करने से कासर रहे। बिला आखर उन्होंने आपस में मशवरा करके इसकी फसद खोली लेकिन चूंकि औरंगज़ेब बिस्तर पर बहुत से बेकरार था इसलिए जिस्म की हरकत से पट्टी खुल गई और खून बहने लगा। जब तक के तबीब वहां पहुंचे काफ़ी खून बहन गया था। तबीब इस बात से बहुत ज़्यादा खौफजदा हुए मगर उन्होंने पट्टी दोबारा बांध दी। औरंगज़ेब ने बुखार की शिद्दत के बायस तरबूजा खाने की ख्वाहिश की जाहिर की और तबीबों ने बेहतियाती से उसकी इजाज़त दे दी। पर तरबूजा खाने से उसकी ज़बान को लकवा हो गया, इसकी कुव्वत गोया तकरीबन ख़त्म हो गई और तबीब उसकी सेहत याबी के बारे में मशकूक हो गए। ये यकीन करके कि अब भाई की शफा को अमीर नहीं रोशन आरा बेगम ने शाही महर पर कब्जा कर लिया और सुल्तान आजम की जानब से जो इस वक्त महज 9 साल का था और उसे हरमसार में ही रहता था बहुत से राजाओं और सिपा सलारों को खतूत लिखे। जब सुल्तान मुअज़्ज़म की माँ को यह मालूम हुआ तो उन्होंने रोशन आरा बेगम से कहा इन हालात के बादशाह सलामत अभी जिंदा है और इनकी शफायाबी की कवी उम्मीद है। सल्तनत में बदनामी और इंतशार फैलने की कोशिश नाजियाबियात है। ये कहकर कि वह बादशाह की आरामगाह की तरफ सप्लें लेकिन रोशन आरा बेगम ने नहायत दीदा दिलेरी से उन्हें बालों से पकड़ लिया और शाही आराम गाह से बाहर निकाल दिया। बल्कि मलका ने बीमार शोहर को मजीद तकल्लफ ना देने की गर्ज से इस बात को सब्र सुकून से बर्दाश्त कर लिया। इस दौरान में शहर दिल्ली की बेचैनी काबिले दीद थी। ये फौरन गश्त कर रही थी कि बादशाह मर चुका है लहाजा अपनी अगराज की तकलीम के लिए इकदाम करने की तैयारी में मसरूफ़ हो गया। बहुत से लोगों का कहना था कि गो बादशाह भी जिंदा है मगर उसकी सेहत याबी की कोई उम्मीद नहीं। ये भी कहा जाता था कि राजा हमूनत सिंह गुजरात से फौज लेकर शाहजहां को कैसे छुड़ाने के लिए आ रहा है। नेज ये का कह मोहब्बत खां भी उसी मुकद्दस से आए मकसद से आएगा। अब ये अपने कारीन पर छोड़ता हूँ कि वो इस इंतशार का तसव्वुर करें जो इसी ऐसी मुमकिनत के दारुल खिलाफा में बरपा हो सकता है जहाँ
کہ لوگ محض اس کی بادشاہ کی اطاعت کے عادی ہوں جو اپنے تمام دیگر مخالفین کو شکست دے کر واحد فتح کی حیثیت حاصل کر لے۔ یہ سوچ کر کہ اب شفا کی کوئی امید نہیں، اورنگزیب نے اپنے وفادار خواجہ سرا دانش کو بلوایا اور سلطنت اعظم کے لیے شدید تاکید کی۔ اس نے حکم دیا کہ میرے مرنے کے بعد اس چھوٹے شہزادے کو شائستہ خان کے حوالے کر دیا جائے، جو ایرانی ہونے کے باعث اس کی حفاظت کرے گا اور اب اسے ذلت خواری سے بچائے گا۔ سلطان اعظم بہت بڑا ہے، اس کے علاوہ اس کی ماں اور طاقتور سردار اس کے طرد خودار ہیں۔ چونکہ سلطان اعظم کا بھائی شہزادہ اکبر بھی بچہ تھا، اس لیے اس بارے میں اس نے کوئی حدارت نہیں دی۔ جب اورنگزیب شدید حالات کی اطلاع آگرہ پہنچی تو خواجہ سرا اعتبار خاں بہت شش پہنچے گرفتار ہوا، بالخصوص اس خبر سے کہ راجہ ہبونت سنگھ اور محبت خاں شاہ جہاں کو آزاد کرانے کے لیے آ رہے ہیں۔ خواجہ سرانے نے اس سختیوں کو یاد کیا جو اس نے شاہ جہاں پر رکھی تھی، اب وہ خود کو مردہ سمجھنے لگا اور سوائی کی عظمت موت کو سامنے مڈلاتے دیکھنے لگا۔ لہذا اس نے زہر حاصل کیا کہ اگر کوئی تبدیلی واقع ہی ہوں تو اپنا خاتمہ کرے۔ اسے سبب وہ روزانہ بہت سے قاصدوں کو بھیجتا تھا کہ وہ اورنگزیب کی زندگی یا موت کی خبر معلوم کریں۔ اسی موقع پر عوام اعتبار خاں کے خلاف تلخ لفظوں میں خیال آرائی کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسے اس کے مظالم کی سزا ملے۔ گو اورنگزیب اب بھی بیمار تھا، مگر اسے اس بات کی اہمیت کا پتہ تھا کہ وہ یہ ثابت کرے کہ وہ زندہ ہے اور ہوش و حواس میں ہے، لہذا اس نے ایسے احکامات صادر کرنے کبھی نہ چھوڑے جن کا نفاذ سازی مملکت میں ہونا تھا۔ مزید برآں اس نے اعتبار خاں کو یہ احکامات بھیجے کہ وہ مکیر بادشاہ کی کڑی نگرانی کرے۔ خط کو سربراہ مہر کرنے کے لیے اس نے مہر شاہی طلب کو، جو ایک تھیلی میں بندھی تھی اور جس پر وہ چھوٹی مہر لگی تھی جسے بادشاہ اپنی انگلی میں پہنتا تھا، جب مہر کی تلاش ہوئی تو وہ نہ مل سکی۔ اس نے روشن آرا بیگم سے دریافت کیا کہ اس کی مہر والی انگشری کہاں ہے۔ شہزادی نے جواب دیا کہ ایک دن جب وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔